लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि श्रम के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति परिपूर्णता हासिल करे, परिवारों का भरण पोषण प्रतिष्ठापूर्ण ढंग से हो सके तथा समाज को मानवीय बनाया जा सके। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। सदाचार संबंधी सूक्तियों से सम्मिलित यह ग्रंथ सभी मनुष्यों के लिए प्रज्ञा का आमंत्रण है। ईश्वर से मिले जीवन के वरदान को मनुष्य योग्य रीति से ग्रहण करे तथा अपने कल्याण के लिए प्रज्ञा और विवेक के साथ इसका सदुपयोग करे, यही इस ग्रंथ का आग्रह है। सूक्ति ग्रंथ में प्रज्ञा, न्याय, धर्म, विनम्रता, ईमानदारी, प्रेम और धैर्य के वर्णन का मनुष्यों को परामर्श दिया गया है, ताकि मनुष्य इन मूल्यों को आत्मसात कर अपने जीवन को सफल और साकार बना सके। वह यह याद रखे कि प्रभु ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वसृष्टा और सर्व पालक हैं, जिनकी आज्ञाओं का पालन कर मनुष्य सुख और शांति में जीवन यापन कर सकता है। ईश्वर की प्रत्येक प्रतिज्ञा विश्वसनीय है। ईश्वर अपने शरणार्थियों की ढाल है। उसके वचनों में अपनी ओर से कुछ मत जोड़ो, कहीं ऐसा न हो कि वह तुमको डांटे और झूठा प्रमाणित करे। श्रोताओ, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 30वें अध्याय के 5वें और 6वें पदों में निहित शब्द। विगत सप्ताह हमने पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इन्हीं पदों की व्याख्या की थी। आगूर की इन सूक्तियों में ईश्वर के वचन की शुद्धता, शक्ति और अखंडता का विवरण मिलता है। आगूर ने ईश्वर के वचन की शुद्धता को महत्व दिया और समझाया कि यह पूरी तरह से शुद्ध होने के कारण अच्छा और मददगार है। इस पर भरोसा किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। श्रोताओं, यहाँ वास्तव में लेखक ने धातुओं के शुद्धिकरण का रूपक प्रस्तुत किया है। ईश्वर ने नबियों के मुख से जो भी कहा है वह सब शुद्ध है। जो भी प्रेरणा भविष्यवक्ताओं ने प्राप्त की है वह शुद्ध है, उसमें कोई त्रुटि नहीं। यह कसौटी पर परीक्षण के बाद भी हमेशा सोने की तरह होता है, जो आग को सहन करता और उसी चमक, उसी शुद्धता और उसी वजन के साथ बाहर निकलता है। लेखक कहता है कि अटकलों और अफवाहों पर विश्वास नहीं किया जाए, बल्कि पुस्तक से यानी कि बाइबल धर्म ग्रंथ से सीखा जाए। इसलिए कि जो कुछ भी हमें ईश प्रकाशना द्वारा मिला है वह हमारे जीवन की पवित्र निर्देशिका है। आगे लेखक कहता है कि ईश वचन उन लोगों के लिए एक ढाल है जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। आगुर कहता है कि ईश्वर एक ढाल है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर अपनी संतान, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपना शुद्ध वचन देते हैं। लेखक का यह भी आग्रह है कि हम ईश वचन को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत न करें, जैसा कि प्रकाशना ग्रंथ के 22वें अध्याय के 18वें और 19वें पदों में आदेश दिया गया है। लिखा है, यदि कोई इनमें कुछ जोड़ेगा तो ईश्वर इस पुस्तक में लिखी हुई विपत्तियां उस पर ढाएगा, और यदि कोई भविष्यवाणी की इस पुस्तक की बातों से कुछ निकालेगा तो ईश्वर इस पुस्तक में वर्णित जीवन वृक्ष और पवित्र नगर से उसका भाग निकाल देगा। श्रोताओ, अनेक बार ऐसा होता है कि कई लोग स्वतः को उपदेशक घोषित करते हैं, किंतु तोड़ मरोड़ कर बाइबल की शिक्षा को प्रस्तुत करते हैं। उन्हीं को उक्त पदों में चेतावनी दी गई है। कुरिन्थियों को प्रेषित पहले पत्र के 4 अध्याय के 6 पद में भी संत पॉल का यही परामर्श है। लिखते हैं, कोई भी धर्म ग्रंथ की मर्यादा का उल्लंघन न करे।
तुम्हारी वाणी है मेरे सम्मुख, तुम्हारे सदा ही सत्यम बनाय संसार सुंदरम।
और अब आइए सूक्ति ग्रंथ के 3 अध्याय के 7 से लेकर 9 तक के पदों में निहित आगूर की सूक्तियों को पढ़ें। आगूर कहता है, मैं तुझसे 2 वरदान मांगता हूं, उन्हें मेरे जीवन काल में ही प्रदान कर। मुझसे कपट और झूठ को दूर कर दे, मुझे न तो गरीबी दे और न अमीरी, मुझे आवश्यक भोजन मात्र प्रदान कर। कहीं ऐसा न हो कि मैं धनी बनकर तुझे अस्वीकार कर दूं और कहूं प्रभु कौन है, अथवा दरिद्र बनकर चोरी करने लगूं और अपने ईश्वर का नाम कलंकित कर दूं। श्रोताओ, इन सूक्तियों में आगूर विनम्र होकर अपने जीवन काल में 2 वरदानों की याचना करता है, और वह है झूठ और कपट से दूर रहने की शक्ति तथा न तो गरीबी और न ही अमीरी। वस्तुतः वह अपनी कमजोरियों को पहचानता है, इसलिए कि जब मनुष्य अमीर होता है और उसके पास सब कुछ होता है, तब अक्सर वह ईश्वर को भूल जाता है, और जब गरीबी के कारण जीवन बहुत कठिन हो जाता है, तब व्यक्ति हताश हो उठता है तथा ईश्वर में अपना विश्वास खो बैठता है। कितनी बार हम कहते हैं कि हम रोज विनती करते हैं, किंतु ईश्वर प्रार्थना ही नहीं सुनते। कितनी बार हमारे मन में यह प्रश्न उठते हैं कि ईश्वर है भी कि नहीं। श्रोताओ, आगूर ऐसी प्रार्थना इसलिए करता है क्योंकि उसका भरोसा केवल ईश्वर पर है, और उसका यह अटल विश्वास है कि ईश्वर में उसका विश्वास ही उसे अनंत काल तक ले जाएगा। फिर 3 अध्याय के 8 और 9 पदों में कहता है, मुझे आवश्यक भोजन मात्र प्रदान कर, कहीं ऐसा न हो कि मैं धनी बनकर तुझे अस्वीकार करते हुए कहूं प्रभु कौन है, अथवा दरिद्र बनकर चोरी करने लगूं और अपने ईश्वर का नाम कलंकित कर दूं। आगूर की प्रार्थना है कि उसे उतना ही मिले जितना प्रभु ने उसके लिए तय किया है, उससे अधिक की वह कामना नहीं करता। जितना जीवन के लिए आवश्यक है, बस उसी की वह अभिलाषा रखता है, क्योंकि अधिक पाने पर ऐसा भी हो सकता है कि वह ईश्वर को ही भूल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि अमीरी के अहंकार में ईश्वर का नाम अपवित्र कर दे, इसलिए इस प्रकार प्रार्थना करता है कि बस उसे उतना ही मिले जितना जीवन यापन के लिए जरूरी है। श्रोताओ, बाइबल आचार्यों ने सुझाया है कि यहाँ आगूर का तात्पर्य केवल भौतिक भोजन से नहीं था। भौतिक भोजन तो शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी है ही, किंतु उससे भी अधिक जरूरी है आत्मिक और आध्यात्मिक भोजन, जो है प्रेम, आशा, पवित्र विचार और भली संगति। इनके लिए भी वह प्रार्थना करता है और हम सबको भी ऐसा करने के लिए आमंत्रित करता है। श्रोताओ, व्यक्ति के मन में प्रेम की भावना, क्षमा की भावना या उदारता की भावना यूं ही नहीं आ जाती, इसके लिए सतत प्रार्थना की आवश्यकता होती है, तभी व्यक्ति इन सद्गुणों को प्राप्त कर सकता है।
वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। आज प्रभु के स्वर्गारोहण का महापर्व है, जिसे सामान्यतः रविवार को मनाया जाता है। इस अवसर पर पोप लियो 14वें ने विश्वासियों को प्रभु द्वारा सौंपे गए मिशन की याद दिलाई तथा मिशन को पूरा करने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना की। उन्होंने एक्स पर लिखा, प्रभु का स्वर्गारोहण महापर्व हमारी निगाहें स्वर्ग की ओर उठाता है। यह हमें उस मिशन की भी याद दिलाता है जो प्रभु यीशु ने हमें इस धरती पर सौंपा है। पवित्र आत्मा हमें इसे ईमानदारी से पूरा करने में मदद करे। परिवारों, बच्चों, दादा दादी और बुजुर्गों की जयंती के अवसर पर इस सप्ताहांत 120 विभिन्न देशों से करीब 60,000 से अधिक तीर्थयात्रियों के रोम आने की उम्मीद है। शुक्रवार 30 मई से रविवार 1 जून तक 3 दिनों के इस कार्यक्रम में प्रार्थना, चिंतन, उत्सव और एक दूसरे को अपना अनुभव साझा करने का अवसर प्राप्त होगा। इस जयंती में करीब 60,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों के रोम आने की उम्मीद है। सभी महाद्वीपों के करीब 120 देशों से आने वाले प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। इटली, स्पेन, अमेरिका, पोलैंड और पुर्तगाल से बड़े समूह मौजूद रहेंगे। वहीं ब्राजील, अर्जेंटीना, कोलंबिया, मेक्सिको, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, कनाडा, रोमानिया, फिलीपींस और चिली से भी कई तीर्थयात्री रोम पहुंचेंगे। अनेक धर्म प्रांतों और संघों के प्रतिनिधि भी उपस्थित होंगे। जयंती के पहले दिन शुक्रवार 30 मई को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक पोप के महागिरजा घरों के पवित्र द्वारों की तीर्थयात्राएं होंगी। जैसा कि अब तक प्रथा रही है, सुबह 10 बजे रोम के ऐतिहासिक केंद्र के प्रांगण में सांस्कृतिक, कलात्मक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों की एक श्रृंखला होगी, जिसका आयोजन परिवार पर्यटक देखभाल से जुड़ी विभिन्न संस्थाओं, संघों और आंदोलनों द्वारा किया जाता है। शनिवार 31 मई को पवित्र द्वारों की तीर्थयात्रा सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी और शनिवार के कार्यक्रम का समापन शाम 6:30 बजे से 8 बजे तक संत जॉन लैटरन महागिरजा घर के प्रांगण में पारिवारिक उत्सव एवं प्रार्थना सभा के साथ होगा, जिसके दौरान माता मरियम को समर्पित महीने के समापन के लिए रोजरी माला विनती की जाएगी। इस आयोजन को यादगार बनाने के लिए संत जॉन लैटरन महागिरजा घर के प्रवेश द्वार पर 5 भाषाओं, इतालवी, अंग्रेजी, स्पैनिश, फ्रेंच और पुर्तगाली में परमधम पीठ फाउंडेशन एड टू द चर्च इन नीड द्वारा संपादित चिल्ड्रन बाइबल के नए संस्करण की 10,000 प्रतियां प्रतिभागियों को वितरित की जाएंगी। जुबली के समापन पर रविवार 1 जून को सुबह 10:30 बजे संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में पोप लियो 14वें समारोही ख्रिस्ता का अनुष्ठान करेंगे, जिसमें दुनिया भर के हजारों बच्चे और परिवार भाग लेंगे। प्रांगण में प्रवेश निःशुल्क है और पोप के ख्रिस्ताग में भाग लेने के लिए टिकट की आवश्यकता नहीं है। रोम में आयोजित एक पुरस्कार विजेता प्रदर्शनी में दर्शाया गया है कि किस प्रकार टाइग्र क्षेत्र में लगभग भुला दिए गए और खतरनाक युद्ध के बीच महिलाओं को मानवीय गरिमा के गंभीर उल्लंघन का सामना करना पड़ रहा है, विशेष रूप से यौन हिंसा का, जिसका उपयोग युद्ध के हथियार के रूप में किया जा रहा है। इथियोपिया के टाइगर क्षेत्र में चल रहे युद्ध के दौरान महिलाओं की मानवीय गरिमा का हनन जारी है, जिसमें यौन हिंसा को युद्ध के हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। लो सल्वातोरे रोमानो की ग्रेटा जीलिया द्वारा लिखित एक हालिया रिपोर्ट में बतलाया गया है कि सिंजिया कैनरी, जिन्हें अफ्रीका दीर्घकालिक परियोजना की श्रेणी में वर्ल्ड प्रेस फोटो इंटरनेशनल फोटो जर्नलिज्म अवार्ड मिला है, ने अपने फोटो रिपोर्टाज युद्ध के मैदान के रूप में महिलाओं के शरीर के लिए इन आवाजहीन महिलाओं द्वारा झेली जाने वाली दैनिक भयावहता को कैद किया है और उनकी एक झलक प्रदान की है। यह युद्ध जो 2020 के अंत में उत्तरी इथियोपिया में इथियोपियाई संघीय बलों और टाइग्र पीपल्स लिबरेशन फ्रंट के बीच शुरू हुआ था, जिसने हजारों लोगों की जान ले ली, लाखों लोगों को विस्थापित किया, अकाल की स्थिति पैदा कर दी और स्थानीय बुनियादी ढांचे को तबाह कर दिया। इसके विनाशकारी प्रभाव के बावजूद टाइग्र संघर्ष को अन्य युद्धों और संघर्षों की तुलना में तुलनात्मक रूप से कम वैश्विक ध्यान मिला है। कैंड्री की प्रदर्शनी दुनिया को संघर्ष से महिलाओं पर पड़ने वाले दुखद परिणामों की याद दिलाती है, जिनमें से अनगिनत महिलाओं की त्वचा पर हिंसा के निशान हैं, जिसने उनके शरीर को युद्ध के मैदान में बदल दिया। फोटोग्राफर ने इसकी निंदा करते हुए कहा, वास्तव में यौन हिंसा का उपयोग युद्ध के हथियार के रूप में किया जाता है, दोनों व्यवस्थित रूप से और राजनीतिक उद्देश्यों के लिए। उन्होंने चेतावनी दी कि इन मानवीय अधिकार उल्लंघनों को अनदेखा किए जाने का खतरा है, क्योंकि उनकी शायद ही कभी जांच की जाती है और आम तौर पर काफी कम हद तक रिपोर्ट की जाती है। इरिट्रिया और टाइग्रे की महिलाओं के लिए सामुदायिक जीवन बहुत जरूरी है। माता पिता या पति द्वारा त्याग दी गई शरणार्थी शिविरों में रहने वाली महिलाएं एक दूसरे का समर्थन करती हैं, यहाँ तक कि वे अपने साथ हुए हिंसा को भी एक दूसरे को साझा करती हैं। कैंड्री की एक तस्वीर में यह बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, जिसमें हाथ कैमरे की ओर बढ़े हुए हैं और कागज के टुकड़े पकड़े हुए हैं। गांव में रहने से यौन हिंसा का जोखिम और भी बढ़ जाता है। महिलाओं ने अपना नाम हिंसा की जगह तारीख क्या हुआ सब कुछ लिखना शुरू कर दिया। कैंड्री ने याद करते हुए कहा कि वे इसकी रिपोर्ट नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, संस्थाएं हिंसा से इनकार करती हैं जो महिलाओं के लिए कलंक बन जाती हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि वे इस बारे में बात करें कि क्या हुआ। वे इस दर्द को आवाज देना चाहती हैं। वैटिकन संचार विभाग के अनुसार परमधम पीठ की आधिकारिक वेबसाइट vatican.va का नया डिजाइन किया गया है, जो पोप की शिक्षाओं को दुनिया के सामने अधिक सुलभ रूप में प्रस्तुत करता है। संचार विभाग ने गुरुवार 29 मई को घोषणा की कि संस्थागत वेबसाइट vatican.va में एक नया ग्राफिक डिजाइन किया गया है। पोर्टल का उद्देश्य है पोप की धर्म शिक्षा एवं कार्तिक कलीसिया के हृदय को पूरी दुनिया के करीब लाना। यह एक नया होम पेज है, जिसे स्पष्ट एवं अधिक सुलभ ब्राउजिंग प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।